लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि वर्तमान युग के परिवारों को प्रेम, सम्मान और मार्गदर्शन मिलता रहे तथा वे दिन ब दिन अपने विश्वास में विकसित होते जाएं। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण विषय हैं रविवारीय आराधना विधि चिंतन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं फादर संजय दिलीप एक्का, सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की और सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओ, दुनिया में कौन ऐसे माता पिता हैं जो अपनी संतानों की बुराई चाहते हैं? इस संसार में क्या कोई ऐसे माता पिता हैं जो अपने बच्चों को दुनिया में खराब या बिगड़ता हुआ देखना चाहते हों? शायद ही कोई ऐसे अभिभावक होंगे जो अपने संतानों की बुराई चाहते हों, अपने कोख से जन्म दिए बच्चों को दुनिया की खराब रीतियों, बुरी बातों को अंगीकृत करने का पाठ पढ़ाते हों। ठीक इसके विपरीत हर जन्म देने वाले माता पिता की दिलो तमन्ना यही होती है कि उसका पुत्र या उसकी पुत्री अपने में अच्छी बातों, अच्छे गुणों को सीखे, वह अच्छी शिक्षा ग्रहण करे और अपने जीवन में सदैव तरक्की करे। दुनिया के हर माता पिता की यही चाह होती है कि उनकी संतान अपनी संपन्नता में सदैव सुख और शांति का जीवन यापन करे। श्रोताओं, हम सभी ईश्वर की प्यारी संतान हैं, जिन्हें उन्होंने अपने अतुल्य प्रेम में जीवन दिया है, और यदि देखा जाए तो जीवन देने वाले ईश्वर हमसे यही चाह रखते हैं कि हम अपने जीवन में सदैव अच्छी बातों और अच्छे गुणों को सीखें, जिससे इस भौतिक संसार में हमारा जीवन सुखद और आनंदमय हो, और न केवल इस दुनिया में वरन अपने मरण के उपरांत भी हम उनके साथ स्वर्गीय अनंत आनंद के भागीदार हो सकें, जिसके लिए हमारा जन्म हुआ है। श्रोताओं, आराधना विधि चिंतन हेतु लिए गए 16वें सामान्य रविवार के पाठ हमारा ध्यान इसी तथ्य की ओर कराते हैं। आइए हम सुसमाचार में प्रभु यीशु के दृष्टांत को सुने, जिसके माध्यम वे अपने पिता के राज्य का संदेश हमें समझाने की कोशिश करते हैं, जिसे स्थापित करने हेतु वे स्वयं हमारी तरह मानव बनकर दुनिया में आए।
ईसा ने उनके सामने एक और दृष्टांत प्रस्तुत किया। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के सदृश है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया था, परंतु जब लोग सो रहे थे तो उसका बैरी आया और गेहूं में जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर फूटा और बाली लगी तब जंगली बीज भी दिखाई पड़ा। इस पर नौकरों ने आकर स्वामी से कहा, मालिक, क्या आपने अपने खेत में अच्छा बीज नहीं बोया था? उसमें जंगली बीज कहाँ से आ पड़ा? स्वामी ने उनसे कहा, यह किसी बैरी का काम है। तब नौकरों ने उससे पूछा, क्या आप चाहते हैं कि हम जाकर जंगली बीज बटोर लें? स्वामी ने उत्तर दिया, नहीं, कहीं ऐसा न हो कि जंगली बीज बटोरते समय तुम गेहूं भी उखाड़ डालो। कटनी तक दोनों को साथ साथ पढ़ने दो। कटनी के समय मैं लूनने वालों से कहूंगा, पहले जंगली बीज बटोर लो और जलाने के लिए उनके गट्ठे बांधो, तब गेहूं को मेरे बखार में जमा करो।
श्रोताओ, सुसमाचार के सुमधुर और जीवनदायी वचन, जिसे यीशु ख्रीस्त बीज के रूप में हमारे हृदयों में बोते हैं, हम उन्हें यत्न के साथ संजोकर अपने जीवन में धारण करें, क्योंकि वचन रूपी यही ईश्वरीय बीज हमारे जीवन में विकसित होते और न केवल हमारे लिए वरन पूरी दुनिया के लिए मीठा फल उत्पन्न करते हैं। श्रोताओ, प्रज्ञा ग्रंथ से लिया गया आज का पहला पाठ हमारे लिए जीवनदाता ईश्वर के गुणों की चर्चा करता है। ईश्वर जिनके द्वारा हमने जीवन पाया है, जिन्होंने सारी सृष्टि की रचना की है, वे ईश्वर अपने द्वारा बनाए गए सभी चीजों की देख रेख करते हैं। वे सबों के स्वामी हैं और इसी कारण वे सब पर दया करते हैं। वे शक्तिशाली होते हुए भी उदारता पूर्वक न्याय करते और सबों पर अपनी करुणामय नजरें फेरते हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर अपने सामर्थ्य को तब प्रकट करते हैं जब उनकी सर्वशक्तिमत्ता पर संदेह किया जाता है। इस तरह ईश्वर उन्हें एक तरह से दंड देते जो उनकी प्रभुत्व को जानते हुए भी उन्हें चुनौती प्रदान करते और उनकी परीक्षा लेते हैं। इस भांति यदि हम आज के पहले पाठ का निचोड़ देखें तो यह हमें जीवनदाता ईश्वर पर अपनी आस्था बनाए रखने हेतु कहता है। ईश्वर पर हमारी आस्था हमें प्रज्ञा में बढ़ने हेतु मदद करती है और हमारी प्रज्ञा के कारण हम विवेकशील होते जो हमें दूसरों के प्रति सहृदय बनाता है। अपनी सहृदयता में हम दूसरों को सुनते और समझने के योग्य बनते हैं। रोमियों के नाम संत पौलुस के पत्र से लिया गया आज का दूसरा पाठ हमें आत्मा से मिलने वाली सहायता का जिक्र करता है। मानव के रूप में हम केवल हाड़ मांस नहीं वरन ईश्वरीय आत्मा के निवास स्थल हैं। एक अति साधारण शब्द में यदि हम अपने में निवास करने वाले ईश्वरीय आत्मा की चर्चा करें तो यह हमारे हृदय की गहराई से निकलने वाली एक आवाज है जो हमें सदैव सच्चाई, अच्छाई और न्याय के मार्ग में चलने को प्रेरित करती है। हम अपने में प्रार्थना करना नहीं जानते, लेकिन हमारे हृदयों के अंतःस्थल से निकलने वाली आवाज जो अस्पष्ट आहें होती हैं, हमारी भावनाओं को प्रकट करती हैं। इस तरह ईश्वर हमारे हृदय के रहस्य जानते हैं, क्योंकि स्वयं उनकी आत्मा हम में होने वाली भावनाओं को आहों स्वरूप प्रकट करती है। श्रोताओ, आज के सुसमाचार में यीशु हमें अपने पिता के राज्य को बोए गए अच्छे बीज की भांति व्यक्त करते हैं। वचन रूपी बीज हमारे लिए हृदय रूपी खेतों में बोया गया है। दुनिया में भौतिक माता पिता की भांति ईश्वर जो हमारे लिए स्वर्गिक पिता हैं, हमारी चिंता करते हुए हमारे हृदय रूपी खेतों को तैयार करते और उनमें सदैव अच्छे बीजों को ही बोते हैं। लेकिन अच्छे बीजों को बोने के बावजूद हमारे हृदय रूपी खेतों में बहुत से बुरे पौधे निकल आते जो हमारे व्यवहार में स्पष्ट झलकते हैं। हिंसा, ईर्ष्या, द्वेष, लड़ाई झगड़ा, लोभ लालच, क्रोध, बदले की भावना, हृदय की कठोरता इत्यादि, ये हमारे जीवन के झाड़ झंकड़ हैं जो हम में बहुधा पनप जाते हैं। ईश्वर हमारे जीवन में इन बीजों को कभी नहीं बोते, इसके बदले वे हमारे जीवन में अपने प्रेम रूपी बीज को बोते हैं जो क्षमा, करुणा, सहृदयता, दया, एकता, शांति और भाईचारे जैसे फलों को उत्पन्न करती है। श्रोताओ, यह हमारे जीवन की हकीकत है। ईश्वर हमें अच्छी चीजों को विकसित करना चाहते हैं, लेकिन शत्रु ईश्वरीय चाह के विपरीत हमें बुरी चीजों को बो देता है। यह हमारे हृदय की द्वंद्व भरी स्थिति को निरूपित करती है जहां हम अपने को स्वयं अपने आप से उलझा हुआ, अपने से लड़ता हुआ पाते हैं, विशेषकर अच्छाई और बुराई के चुनाव को लेकर। ईश्वर जिन्होंने हमें जीवन दिया है, हमें अपने प्रेम में स्वतंत्रता प्रदान करते हैं कि हम अपने विवेक का उपयोग करते हुए अच्छी चीजों का चुनाव करें। लेकिन कई बार हम अपनी दुर्बलता के कारण बुरी चीजों में गिर ही जाते हैं, लेकिन ऐसे परिस्थिति में भी वे हमें दंड नहीं देते वरन हमें बढ़ने देते हैं, यही सोचकर कि हमारा जीवन दूसरों के लिए विनाश का कारण ना बने बल्कि हम दूसरों की अच्छाई को देखकर अपने में सुधार ला सकें। आइए हम माता मरियम से निवेदन करें कि वे हमें अपने बेटे यीशु ख्रिस्त हमारे मुक्तिदाता के प्रेम और करुणा को हमें समझने हेतु अपनी कृपा प्रदान करें, जिससे हम अपने हृदय में बोए गए अच्छे बीजों को विकसित कर सकें, जिसके द्वारा त्रित्वमय ईश्वर की महिमा सदा होती है।
प्रभु यीशु मेरे दिल में तू आया सुख लाया, प्रभु यीशु मेरे दिल में तू आया सुख लाया। शुभ नाम शुभ शाम दिल से मैंने गाया, शुभ नाम शुभ शाम दिल से मैंने गाया, प्रभु यीशु मेरे दिल में जला है उसमें तू ही तो है, जिसे पूजा है मैंने हे प्रभु तू ही वो है। धन्य हूँ तू मेरे घर आया प्रभु यीशु मेरे दिल में
वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा फ्रांसिस ने कार्डिनल जेनोन ग्रोकोलेवास्की के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए एक तार संदेश प्रेषित किया। कार्डिनल का निधन शुक्रवार को हुआ, वे 80 साल के थे। कार्डिनल जेनोन ने कैथोलिक शिक्षा के लिए गठित परम धम्म पीठ धम्म संघ के अध्यक्ष के रूप में संत पापा जॉन पॉल द्वितीय एवं संत पापा बेनेडिक्ट 16वें के साथ नजदीकी से काम किया था। संत पापा फ्रांसिस ने कार्डिनल जेनोन के भाई व्लादिस्लाव ग्रोकोलेवास्की को तार संदेश भेजकर पूरे परिवार एवं कार्डिनल के निधन पर शोक मनाने वाले सभी लोगों को अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त की। उन्होंने लिखा, मैं कृतज्ञता के साथ याद करता हूं कि उन्होंने परम धम्म पीठ ग्रेगोरियन विश्वविद्यालय एवं लातरन विश्वविद्यालय में कलीसियाई कानून के एक महत्वपूर्ण प्रोफेसर के रूप में प्रभावशाली कार्य किए हैं। संत पापा ने याद किया कि कार्डिनल जेनोन ने खासकर परम धम्म पीठ की सेवा बड़ी उदारता से की। पहले प्रेरितिक अदालत के सुप्रीम कोर्ट के सचिव एवं अध्यक्ष के रूप में और उसके बाद कैथोलिक शिक्षा के लिए स्थापित धम्म संघ के अध्यक्ष के रूप में, इन क्षेत्रों में उन्होंने पुरोहित्य उत्साह सुसमाचार के प्रति निष्ठा एवं कलीसिया के निर्माण हेतु अथक परिश्रम का परिचय दिया। संत पापा ने प्रार्थना की कि प्रभु यीशु उन्हें अनंत पुरस्कार से पुरस्कृत करें, जिसकी प्रतिज्ञा उन्होंने अपने शिष्यों से की है। संत पापा ने उनके निधन पर शोक मनाने वाले सभी लोगों को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद दिया। कार्डिनल का अंतिम संस्कार संत पेट्रस महागिरजा घर में 18 जुलाई को किया जाएगा। कार्डिनल मंडल के सहायक डीन कार्डिनल लियोनार्डो सांद्री उनके अंतिम संस्कार के लिए ख्रिस्ताग अर्पित करेंगे, जिसके अंत में संत पापा फ्रांसिस अंतिम विदाई की धम्म विधि का अनुष्ठान करेंगे। कार्डिनल जेनोन का जन्म 11 अक्टूबर 1939 को पोलैंड के ब्रोडकी में हुआ था। उनका पुरोहिताभिषेक 27 मार्च 1963 को पोजनान महाधर्म प्रांत के लिए हुआ था। पढ़ाई के लिए रोम रवाना होने के पूर्व उन्होंने 3 वर्षों तक ख्रिस्त मुक्तिदाता पल्ली में अपनी सेवाएं दी थी। एक लंबी बहस के बाद विश्वव्यापी कलीसिया पर पोप की श्रेष्ठता के डॉगमा एवं संत पापा की धर्म शिक्षा की अचूकता को प्रथम वैटिकन महासभा में अनुमोदन दिया गया था। कलीसिया में इन डॉगमाओं का क्या महत्व है? 150 साल पहले 18 जुलाई 1870 को संविधान पास्तोर एतेर्नोस को प्रकाशित किया गया था, जिसमें इन दोनों डॉगमाओं का जिक्र है। संत पापा पॉल षष्ठम ने 1969 के एक आम दर्शन समारोह में कहा था, सैद्धांतिक संविधान को अनुमोदन 535 गुमनाम काउंसिल धर्माचार्यों के द्वारा एक लंबी एवं जोरदार बहस के बाद दिया गया था। उन्होंने इसे कलीसिया के जीवन में एक नाटकीय पृष्ठ कहा था। इस सभा में समिति के 83 धर्माचार्यों ने वोट नहीं किया था। दस्तावेज पर अनुमोदन प्रथम वैटिकन महासभा के अंतिम दिन दिया गया था, जिसको फ्रैंको प्राशिया युद्ध शुरू होने के कारण स्थगित कर दिया गया था। 20 सितंबर 1870 को इतालवी सैनिकों द्वारा रोम पर कब्जा करने के बाद, जो प्रभावी रूप से परमधम पीठे राज्य के अंत को चिन्हित करता है, समिति अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई थी।
वाटिकन संचार विभाग के प्रीफेक्ट डॉक्टर पाओलो रुफिनी ने संचारकों को आश्वस्त करते हुए स्वाहिली भाषा में कहा, तू को पामोजा, जिसका अर्थ है हम एक साथ हैं। डॉक्टर रुफिनी ने अफ्रीका और उसके लोगों के साथ अपनी व्यक्तिगत आत्मीयता और निकटता को प्रकट करते हुए कहा कि कई साल पहले संत पापा पॉल छठे का दस्तावेज अफ्रीका टेरारियम उनके दिल को छू गया। अफ्रीका टेरारियम में संत पापा पॉल छठे ने अफ्रीका में कलीसिया के सामाजिक मिशन के लिए अपने विजन को रेखांकित किया। प्रीफेक्ट रुफिनी ने कहा, जब मैं छोटा था तब से खुद को अफ्रीका और अफ्रीकी लोगों के साथ मजबूती से जुड़ा हुआ महसूस करता हूँ। जब से संत पापा पॉल छठे ने संत पौलुस का उद्धृत करते हुए लिखा कि अफ्रीकी लोगों की आवाज उसी तरह सपने में संत पौलुस को सुनाई गई थी जब वह त्रोआस में था, उनकी आवाज हमारी आत्माओं में आज भी जारी है, आइए और हमारी सहायता कीजिए, यही समय है। अफ्रीका में वाटिकन रेडियो के 70 वर्षों के प्रसारण को मनाने के लिए आधिकारिक तौर पर एक वेबिनार के आभासी सम्मेलन में एकत्र हुए अफ्रीका के कैथोलिक संचार कार्यकर्ताओं को डॉक्टर रुफिनी ने संबोधित किया। वाटिकन रेडियो की अफ्रीका अंग्रेजी सेवा और सिग्निस अफ्रीका द्वारा संयुक्त रूप से वेबिनार का आयोजन किया गया था, जिसकी विषय वस्तु थी अफ्रीका में नस्लीय और सामाजिक क्लेशों का प्रबंधन कहानी के माध्यम से। डॉक्टर रुफिनी ने ऑनलाइन मंच को याद दिलाया कि कई पहलुओं में संचार दोधारी था, यह या तो एक बेहतर दुनिया के निर्माण का साधन हो सकता है या गलतफहमी, नाराजगी और यहाँ तक कि दुश्मनी को उकसाने का तंत्र भी हो सकता है। वाटिकन संचार विभाग के प्रीफेक्ट ने वाटिकन न्यूज एजेंसी की योजना की घोषणा की। उन्होंने सभी कैथोलिक अफ्रीकी मीडिया कर्मियों को इस प्रयास में अपनी भागीदारी के लिए आह्वान किया। इस आयोजन में अन्य वक्ताओं में नाइजीरियाई धर्माध्यक्ष इमानुएल बद्दो, पूर्व प्रीफेक्ट फादर फेडरिको लोम्बार्डी एसजे, नाइजीरिया की मदर मेरी क्लाउड और प्रोफेसर फादर वाल्टर एजहिरी का सिग्निस अफ्रीका के अध्यक्ष भी शामिल थे। और अंतर्राष्ट्रीय कारितास की वार्षिक रिपोर्ट पेश करते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेबनान की कलीसिया की उदार संगठन के प्रतिनिधि ने देश के गंभीर रूप में मानवीय संकटों और समस्याओं का एक लेखा जोखा पेश किया। वैश्विक युद्ध विराम के लिए संत पापा फ्रांसिस की अपील में शामिल होते हुए G20 शिखर सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय कारितास ने G20 के वित्त मंत्रियों से सीधे अनुरोध किया कि गरीब देशों का ऋण या तो माफ किया जाए या कम से कम किया जाए, ताकि वे उस धन का उपयोग विकास कार्यक्रमों में कर सकें। इस आयोजन में कारितास लेबनान की निदेशक रीता रहीम ने लेबनान के अब तक के सबसे खराब आर्थिक संकट और उसके लाखों सीरियाई शरणार्थियों, प्रवासी कामगारों और पूरे क्षेत्र पर इसके प्रभाव के बारे में बताया। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।